मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 5 अगस्त 2015 है और एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में 15 दिन की होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विजय कुमार मुंबई से, जितेंद्र सिंह आप मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, अमित द्विवेदी रायपुर से, अभय मिश्रा गोरखपुर से और स्कंद कुमार वाराणसी से। तो विजय, जितेंद्र, अमित, अभय और स्कंद, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक दो छोटी छोटी खबरें हैं। पहला तो ये कि मोहम्मद सुलेमान रजा हैं जो बिजनौर से हैं, इन्हें मैं बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने अभी प्री एक रिव्यू ऑफिसर होता है उसका प्री एग्जाम यूपी का है ये, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है और इसका श्रेय इन्होंने एकेडमी के इस ऑडियो गाइडेंस को दिया है। तो सुलेमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और साथ ही आपको बधाई इस सुंदर सफलता के लिए, सूचना देने के लिए आभार और धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको आगे भी इसी तरह से सफल बनाए। और एक विशेष बात यह है कि सुलेमान ने लिखा है कि उन्हें ऑडियो गाइडेंस सुनने की जो सलाह थी मुजम्मिल अंसारी जी ने दी थी और उन्होंने अंसारी जी को भी ईमेल के जरिए अपनी उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। फ्रेंड्स, दूसरी छोटी सी खबर यह है कि मेरे पास पिछले दिनों से काफी समय से बहुत से मेल आ रहे हैं और जिनका संबंध इस बात से है कि वो किस तरह से क्लासेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप जब AFEIS.com पर जाएंगे तो आप देखिए कि उसमें क्लासेस का अलग से पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप उस डिटेल्स में जाइए और वहां आपको सारी बातें पूरी की पूरी प्रोसीजर्स लिखी हुई हैं। सामान्य रूप से मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अभी आपको 2000 रुपये बैंक में जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना है। बैंक के किस अकाउंट में आप जमा कराएंगे बैंक में, वो ऑलरेडी उस AFEIS.com के क्लासेस वाले में दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में आप 2000 रुपये जमा करा दीजिए। जमा कराने के बाद आपको वहीं एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उस मोबाइल नंबर से आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने 2000 रुपये जमा करा दिए हैं। इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगी और साथ ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और इस प्रकार आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मित्रों, एक बात और वो ये कि मेरे पास इस बीच में पिछले करीब 2-3 दिन से काफी मेल आ रहे हैं जो अपनी अपनी परिस्थितियों का हवाला देकर के अक्टूबर की क्लासेस के लिए आना चाह रहे हैं। मित्रों, मैं आप लोगों की जरूरत को समझ सकता हूं, आपकी इस जेन्यून डिमांड के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति भी है, लेकिन न केवल मर्यादा की ही बात है बल्कि एक सीमाओं की भी बात है। सीमा इस मायने में कि क्लासेस में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, कितने रखे जाने हैं। तो मैं उन सबसे माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, अक्टूबर की क्लासेस के लिए एडमिशन मिल पाना अब बिल्कुल भी संभव नहीं है। अक्टूबर की क्लासेस के रजिस्ट्रेशन तो मेरी समझ से शायद 20 जून के आसपास ही बंद हो चुके हैं, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों की इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि देर है, अंधेर नहीं है। मार्च इसीलिए उस समय चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर स्टूडेंट का आने लगा, इसीलिए हम लोगों ने फिर तुरंत फरवरी में ये क्लासेस रखी हैं। तो यदि आप सचमुच इसका फायदा उठाना चाहते हैं और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, तो फिलहाल तो एक ही विकल्प बचता है और वो फरवरी 2016 का विकल्प है फ्रेंड्स। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मोटिवेशन वाले पार्ट पर। फ्रेंड्स, कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपके लेने की क्षमता है वही आप हैं। कल मैंने इसके ऊपर विस्तार से बात की थी और आज फिर मैं उसे और एक्सटेंड करूंगा। दोस्तों, ये जो मैं अभी टॉपिक लेकर चल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे 2-3 एंगल से देखें। एक एंगल मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से एक सामान्य सा विषय होता है और उसे आप अपनी सोच का सहारा देकर के कितना मजबूत बना सकते हैं, कितना विस्तार दे सकते हैं, कितनी गहराई में जा सकते हैं, किस बेहतर तरीके से आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही कला आपको खासकर निबंध के पेपर में बेहतर अंक दिलाएगी। दूसरी बात मित्रों, आपको इस रूप में भी देखना है कि कैसे चीजों की एनालिसिस की जाती है। मेरे पास बहुत से मेल इसको लेकर के भी आते हैं कि सर आप बार बार एनालिसिस की बात करते हैं कि एनालिसिस एनालिटिकल कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन हमें बताइए तो कि वो कैसे होनी चाहिए। मित्रों, जो मैं आप लोगों से इतनी देर तक जो ऑडियो गाइडेंस में बात करता हूं वो यही बताने की कोशिश है कि एनालिटिकल जो कैपेसिटी है, एनालिसिस की जो कैपेसिटी है वो क्या है और उसे आप कैसे विकसित करेंगे। ये कोई गणित के फार्मूले की तरह नहीं है कि मैं आपको फार्मूला बता दूं और आप उसको कर लेंगे। ये एक कैपेसिटी होती है और आप इसमें से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक चीज को विस्तार दिया जाता है। आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगेंगी। अलग से इस पर अगर आप सोचेंगे कि कभी चर्चा की जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बीच बीच में मैं ऑलरेडी जब भी ऐसे अवसर आते हैं मैं उसकी हिंट आप लोगों को देता हूं, अगर आप लोग ध्यान दें तो। फ्रेंड्स, तो ये दो तीन पॉइंट्स थे जो मैं खासकर इस सब्जेक्ट को लेकर के आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स, जो आप लेते हैं वही आप होते हैं और सच पूछे तो वही आपको मिलता है और वही आपके पास रहता भी है, बाकी सारी चीजें चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। मित्रों, अभी तो बरसात के दिन आ गए। कुछ दिनों पहले जगह जगह पर आप देखेंगे, छोटे कस्बों में और बड़े बड़े शहरों में भी आपको गन्ने की पेराई करने वाले लोग ठेले पर एक मशीन रखे रहते हैं, एक मशीन रहती है और उस पर ठेले पर और फिर गन्ने की पेराई करके आपको ताजा ताजा गन्ने का रस पिलाते हैं। कभी आपने उस मशीन को ध्यान से देखा, उस मशीन में दो रोलर होते हैं और वो दो रोलर आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं, एकदम चिपके होते हैं। और यदि आप उन दो रोलर्स के बीच में से झांक कर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रकाश की किरण तक दिखाई नहीं देगी, यानी कि उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता है। और जब आप कहते हैं कि भैया एक गिलास गन्ने का रस देना, तो भैया क्या करते हैं? भैया कुछ नहीं, बिल्कुल जो गन्ने होते हैं पतले पतले से गन्ने, दो गन्ने उठाते हैं या एक गन्ना उठाते हैं और रोलर के बीच में उसे फंसाते हैं। शुरू में अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इतना मोटा गन्ना और इन दो रोलर के बीच में स्पेस ही कहां है कि वो इसमें फंस सकेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही वो उसको गन्ने को उससे सटा करके और फिर या तो बटन दबाते हैं या हाथ से जो एक हैंडल होता है उसको चलाना शुरू करते हैं, वो जो दो रोलर हैं वो गन्ने को खींचना, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और गन्ना इस पार से उस पार निकलने लगता है। और उन बीच का जो दबाव है, दोनों रोलर्स का जो दबाव है, उस दबाव के कारण गन्ने का रस नीचे जो उनका एक जार सा रखा रहता है उसमें टपकना शुरू होता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, अब आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जो आप समझ सकेंगे, वो ये कि वहां कोई स्पेस नहीं थी, इसके बाद भी वहां स्पेस थी। और ये स्पेस किस बात की थी? ये स्पेस लेने की स्पेस थी, ये स्पेस चाहने की स्पेस थी। मित्रों, इसे ही मैं कहता हूं चेतना, कॉन्शस, कि सही मायने में आप में उन चीजों को चाहने की चेतना कितनी प्रबल है, आप उसे कितने आकर्षण के साथ चाह रहे हैं या सिर्फ ऊपरी तौर पर ही आप चाह रहे हैं। मित्रों, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं, चलिए आज मैं फिर दे देता हूं। द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाने के बाद एकलव्य ने क्या किया था? क्या मिट्टी की मूर्ति ने एकलव्य को कुछ दिया था या एकलव्य ने स्वयं ही उससे लिया था, उस मूर्ति से ली थी? आप सोच करके देखिए, अभिमन्यु गर्भ में अभिमन्यु थे और अर्जुन अपनी पत्नी से केवल इस तरह के जो चक्रव्यूह रचे जाते हैं जिसमें अभिमन्यु मारे गए, उसको कैसे तोड़ा जाता है इसके बारे में बता रहे थे। अभिमन्यु ने वहां से ले लिया। पता नहीं कितने गर्भस्थ शिशुओं को कितनी कहानियां और क्या क्या ज्ञान सुनने को मिला होगा। तो यदि ये प्रक्रिया ही है कि ऐसे बताया जा सकता है तो सबको मालूम होना चाहिए था। तो अर्जुन नहीं दे रहा है, अभिमन्यु ले रहा है, एकलव्य नहीं दे रहा है, द्रोणाचार्य नहीं दे रहे हैं, एकलव्य ले रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आपकी अपनी जो क्षमता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, कभी कभी बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है, लोग देने वाले को दोष देते हैं, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेने वाले का भी कुछ दोष हो। क्योंकि जब लेने वाला आतुर होगा, लेने वाला व्याकुल होगा, लेने वाला अलर्ट होगा, लेने वाला डिमांड करेगा, तो देने वाला भला क्यों नहीं देगा? और सबसे बड़ी बात है कि उसको देने में मजा आएगा, तो वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से देगा, पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे से देगा। इसीलिए आप देखिए, कवि सम्मेलनों में कहते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो फिर मैं आपकी दाद चाहूंगा। क्योंकि जब आप दाद देते हैं तो ताली, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी एनर्जी में इतना इजाफा होता है, उसको इतना जोश आता है कि शब्द वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, लेकिन बोलने का अंदाज कुछ इतना बेहतर हो जाता है कि आपको मजा आने लगता है। और मित्रों, यदि सच में इसका जजमेंट आपको लेना हो, तो अभी शशि थरूर जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक 25 मिनट का छोटा सा भाषण दिया है, जो भारत, खासकर ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत का शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया, उसको लेकर के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। आप देखिए उसको इसी लिहाज से देखिए कि जो बैठे हुए लोग हैं, तालियों की गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट, आप कह सकते हैं कि साहब वो तो शशि थरूर जी बोलते ही इतना अच्छा है कि उनकी तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इन्हीं शशि थरूर जी को मैंने 3 साल पहले जयपुर में जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है, इस उससे कई गुना बड़े ऑडियंस के सामने बोलते हुए देखा है, सुना है, और वो उसी तरीके से, उसी अंदाज में बोल रहे थे जिस तरह से वो ऑक्सफोर्ड में बोल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी। और ऑक्सफोर्ड में 25 मिनट में कितनी बार तालियों की गड़गड़ाहट हुई है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर के देखिए, उसको सुनिए। तो जब सामने वाले इतने अलर्ट हैं तो देने वाला देगा ही, वो बिना दिए रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, ये मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं सच पूछे तो जो हमारा जो जीवन है, जो चलता हुआ जीवन है, या जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं वहीं से उदाहरण लेना और देना पसंद करता हूं। आप लोगों को ध्यान होगा कि लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कुछ इंग्लिश के जो बहुत अच्छे एडिटोरियल होते हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं, यदि आप लोग चाहेंगे तो उसका ट्रांसलेशन करा करके और आप लोगों को वो अवेलेबल कराया जा सकता है। और नमूने के बतौर पर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल ट्रांसलेशन करा करके अवेलेबल भी कराया था। मित्रों, 1 सप्ताह हो गए और मैं जानता हूं कि मेरे इस ऑडियो को सुनने वालों की संख्या हजारों में है। कितने लोगों ने इसको ओके किया है आपको मालूम है? संख्या दहाई में भी नहीं है, दहाई का आधा भी नहीं है, दहाई का 1/3 है। केवल 3 लोगों की मेरे पास मेल आई है, 3 लोगों के, कि सर ये बहुत अच्छा आइडिया और प्लीज हमें अवेलेबल कराएं। अब आप बताइए कि मैं कैसे अवेलेबल कराऊं? हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, तो फिलहाल मुझे फिर यही करना पड़ा कि अभी इस आइडिया को मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए, शायद आप लोगों की इतनी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसलेशन कराना, फिर चेक करना एक एक लाइन, और फिर देखना करना, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। सच पूछे तो ओरिजिनल लिख लेना आसान होता है, लेकिन ट्रांसलेशन का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? सीधी सी बात है कि जो लेने वाले थे, जो पढ़ने वाले थे, यदि वो जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि फिर देने वाले देकर के भी क्या करेगा, वो आत्मसंतोष के लिए देता रहेगा कि हाँ हम दे रहे हैं और कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, और पता लगा कि सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मित्रों, याद रखिए, आप अपनी भूमिका को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। और केवल ये एक छोटा सा मंत्र है और ये आपके जिंदगी को बदल के रख देगा, इतने ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन ला देगा कि तुरंत तो कुछ नहीं होता है, साल भर के बाद आपको अंदाज लगाना मुश्किल हो जाएगा कि अरे मैं वही हूं। दूसरे लोग जब आपसे मिलेंगे तो कहेंगे अरे अरे तुम वही हो, ऐसा होगा। आप करके देखिए। लेकिन अभी हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अभी कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं कि इसको कितना आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस पोर्शन में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज के ऊपर। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में ज्यादा कुछ खबरें तो नहीं है, लेकिन 1-2 खबरें ऐसी हैं जिनको लेकर के हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। एक बहुत ही फेवरेबल रिपोर्ट आई है भारत के पक्ष में फ्रेंड्स, और वो ये है कि जो संघीय जांच एजेंसी के जो हेड हैं तारिक होसा, उन्होंने अपनी एक अपना एक आर्टिकल लिखा है, एक आर्टिकल लिखा उन्होंने डॉन पेपर में। अब मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि डॉन पेपर किस देश से छपकर निकलता है, किस देश में छपता है। आपको चाहिए कि आप देखें कि ये अखबार कहां छपता है, क्योंकि हो सकता है कि प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चार पेपर्स के नाम दे दिए जाए और उसके आगे चार देशों के नाम दे दिए जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही मेल में नहीं है। तो वो तो काम मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूं, है ना। आप लोग हालांकि मेरे ऊपर नाराज होंगे कि सर बता ही देते तो क्या हर्ज था, हमको अब उतना टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों टाइम लगाइए, क्योंकि देखिए जिस चीज में आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके पाते हैं तो उसकी वैल्यू भी होती है, वो भी लेने का एक अलग तरीके का सिद्धांत है, उस पर मैं कल आपसे बात करूंगा। डॉन पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक भारत में जो मुंबई पर हमला हुआ था उसकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी गई थी, जिन्होंने अटैक किया था उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, वो सब कुछ पाकिस्तान में किया गया था। और इसके बाद उन्होंने क्लियर कट ये लिखा है उसमें कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह इस रियलिटी को एक्सेप्ट करे, अपनी गलती को माने और इसे दुरुस्त करे। मित्रों एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है। आप देखेंगे कि इस पर अब आर्टिकल्स आने शुरू होंगे, एडिटोरियल्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे। और सच पूछिए तो जिसमें एन राम का आपने वॉइस वर्सा वो भी सुना होगा, आवाज भी सुनी होगी, उन्होंने इस बात को कहा, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा भी कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसका वो इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है। क्या वो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स? भारत शुरू से इस बात को कहता रहा है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत आतंकवादी संगठनों का गढ़ है, भारत के खिलाफ तो अक्सर वहां से ही अटैक होते हैं, लेकिन दुनिया बहुत कम इस बात पर ध्यान देती है। दुनिया हो सकता है कि जानते हुए भी इसको स्वीकार करते हुए भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि सभी देशों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ही भारत के ऊपर एक अलग तरह के आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान में भारत ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। यहां तक कि यूएनओ तक में पाकिस्तान कश्मीर की बात को उठाने से बाज नहीं आता, जबकि शिमला समझौते के अंतर्गत साफ साफ ये बात कही गई है कि दोनों देश आपसी किसी भी ऐसे मामले का जो सुलह है बातचीत के जरिए करेंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो नहीं उठाएंगे इन मामलों को, लेकिन पाकिस्तान उससे भी बाज नहीं आता। इसमें जो सबसे विचित्र सी जो स्थिति है दोस्तों, स्थिति नहीं कहना चाहिए, जो रोल है वो सच पूछे तो अमेरिका का है। अमेरिका सोचिए, जिसने ओसामा बिन लादेन को कहां एटाबाद के कहां कहां से ढूंढ करके और निकाल करके मार डाला, क्या सच में वो अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत पर क्यों इस तरह के अटैक हो रहे हैं, चाहे वो भी वो गुरदासपुर का हो रहा हो या फिर आप देखते हैं कि फायरिंग हो रही हो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में, या मुंबई जैसे हमले हो रहे हों, या फिर हमारे संसद पर अटैक हुआ हो, क्या उसको नहीं मालूम है? इसके बाद भी वो क्यों पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से जो एक प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे उसने दूसरे देशों पर वो प्रतिबंध लगा देता है और बिल्कुल उसको एक तरीके से मेन स्ट्रीम से काट देता है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है? ये एक राजनीति होती है ना, सबके अपनी अपनी विदेश नीति होती है, वो उनकी अपनी विदेश नीति का हिस्सा है कि यहां अपनी पकड़ इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए या शक्ति संतुलन के लिए या जो भी कह लीजिए, वो पाकिस्तान को इस तरह से आउटराइट किनारे नहीं कर पा रहा है। लेकिन मित्र होता क्या है कि जब इस तरह की रिपोर्ट आती है और भारत जब इसको अब इश्यू बना करके विश्व मंचों पर उठाएगा, भले ही विश्व मंचों पर सीधे सीधे न उठाए, लेकिन इस बात को वो तो मतलब समझ लीजिए कि इस बात का उसे इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना ही चाहिए। और आपको मालूम है कि अभी शायद 23-24 या 24-25 अगस्त को दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी बैठक भी होनी है, वहां भी ये बात जरूर उभर कर आएगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि दोस्तों ये जो तारिक होसा है ये इससे पहले पाकिस्तान के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी भी रहे हुए हैं, वो चीजों को जानते हैं, चीजों को समझते हैं, वो पाकिस्तान के ही नागरिक हैं और इसके बाद संघीय एजेंसी की वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हम उनकी ईमानदारी को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े तटस्थ भाव से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और डेफिनेटली भारत इस रिपोर्ट का अपने तरीके से उपयोग करेगा ही और उसे करना चाहिए। डेफिनेटली इस पर अब आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच का एक माइलस्टोन हो, लेकिन वो हम देखते आगे चल करके देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो यहां मैं आपको केवल अलर्ट करना चाहूंगा कि इस पर आप लोग बकायदे ध्यान दें, क्योंकि ये जो मामला है पाकिस्तान के साथ भारत का जो मामला है, ये केवल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की ही बात नहीं है और केवल इंटरनल सिक्योरिटी की ही बात नहीं है, इसमें दोनों ही सिक्योरिटीज हमारी जो है शामिल हैं। तो मित्रों फिर आगे देखेंगे कि इस पर क्या होता है। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो खासकर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के थी, मौद्रिक नीति को लेकर के थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी दो महीने की जो मौद्रिक नीति होती है वो डिक्लेयर की है और उसमें उन्होंने किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। मित्रों यहां मैं चूंकि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है तो उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, और खासकर जो रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, जो SLR होती है, इसके बारे में भी कई बार मैं डिटेल्स में स्टूडेंट को बता चुका हूं, और हालांकि लगातार नए नए स्टूडेंट आते हैं और वो इसे मिस करेंगे, लेकिन सारी चीजों को एक ले करके चलना होता है कि पुराने स्टूडेंट हैं जो पिछले लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय से इसको सुन रहे हैं, तो अभी मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि एक एक समय है अभी जब हर एक स्टूडेंट को जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, और चाहे फिर वो स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, उनको चाहिए कि आज या कल वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चैप्टर खोले, बकायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चैप्टर खोलें और देखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसके क्या क्या काम हैं, ये क्या क्या कर रहा है, किस तरह से इसका गठन होता है। इन सारी बातों को अच्छी तरह से सोचने समझने पढ़ने के बाद फिर ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने से भी ज्यादा बड़ी बात है कि इनको समझें, और समझने का उनका एंगल ये होना चाहिए कि ये किस तरीके से हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि अभी आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले से, लगभग 3-4 दिन पीछे के आप अखबार अगर उठाएंगे तो लगातार इस बात का प्रेशर, मतलब अखबारों में लिखा जा रहा था कि रिजर्व बैंक से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने रेपो रेट को घटाए, और ये भी कहा जा रहा था कि सरकार भी शायद दबाव डाल रही है कि रेपो रेट को घटाए, यानी कि फिर उसे ब्याज दर कम हो जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि रेपो रेट का ब्याज दर से क्या संबंध है, फिर रिवर्स रेपो रेट से ब्याज दर का क्या संबंध है। अभी आपने न्यूज में एक स्टेटमेंट सुना कि अभी मानसून आधा ही आया है, मानसून सत्र अभी बारिश का पूरा सही अनुमान नहीं लग पा रहा है, इसीलिए रिजर्व बैंक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि यदि उस बैंक के ऋण जो ब्याज देती है, बैंक जिस ब्याज पर दूसरों को ऋण देती है, यदि उसके रेट कम हो गए तो हो सकता है मुद्रास्फीति बढ़ जाए। अब सुनने में बड़ी विचित्र सी चीज लगती है कि यार रेपो रेट और वहां कम होगा तो फिर बैंक जो है जो दूसरों को ऋण देती है उसकी ब्याज की दर घट जाएगी, जब ब्याज की दर घट जाएगी तो मुद्रा स्फीति बढ़ने की आशंका होगी, तो ये सारा साइकिल चलता कैसे है। तो आपको पढ़ते समय इस सारे साइकिल को समझना है, राइट। फिर जहां तक मेन एग्जामिनेशन का सवाल है, मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाने का सवाल है, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात हो रही है ना, रिजर्व बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि अभी तो जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के वो सारे डिसीजंस लेते हैं। ये भी कभी कभी बात उठती है कि भाई वहां एक पैनल बना दिया जाए, जैसे कि अब इलेक्शन कमीशन में है, तो इलेक्शन कमीशन में पहले तो एक ही होते थे, इलेक्शन कमिश्नर होते थे, वही सारे डिसीजन लेते थे, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए अब उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए, तो 3 हो गए हैं, तो अब वो तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं, फिर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो इसी आधार पर रिजर्व बैंक में भी कर दिया जाए, कुछ लोगों की डिमांड थी, ताकि चूंकि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, पढ़ने में भी आया है कि ये विचार अभी टाल दिया गया है। और दोस्तों आप यहां एक चीज और भी देखेंगे कि जो अभी हमारे गवर्नर है रिजर्व बैंक के, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, है ना, वो प्रोफेशनल है, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल। और सच पूछिए तो अभी जो हमारे गवर्नर है रिजर्व बैंक को, इनको दुनिया के बेहतरीन रिजर्व बैंक के गवर्नर्स में माना जा रहा है, जिनके पास आर्थिक समझ है, जो किसी तरह के सरकारी दबाव में झुकते नहीं है, जो इमोशनल तरीके से डिसीजन नहीं लेते हैं, केवल वही करते हैं जो किया जाना चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो माने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर एक सिविल सर्विस के बारे में जो क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज के पेपर में एक क्वेश्चन सिविल सर्विस के बारे में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होता है, और आपको इस बीच में काफी कुछ इस तरह के आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल रहे होंगे कि अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आप जो सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है, जिसके पार्ट आप होने जा रहे हैं, इसको बदला जाना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से किया जाना चाहिए। उसमें क्या एक जरूरत महसूस की जा रही कि प्रोफेशनल्स को ज्यादा लाया जाए, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वही उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। अगर बाहर से कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं तो उनको ये पद, ये बड़े ऊंचे जो पद हैं वो दिए जाने चाहिए। जैसे देखिए नंदन नीलकेणी, आधार नीलकेणी जी जो थे, पहले जब आधार कार्ड का जो प्राधिकरण बनाया गया, आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो उनको ला करके उसका हेड बनाया गया। तो ये भी एक डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और सच में यह है कि सच तो यह है कि जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, वो इस बात को प्रूफ भी कर रहे हैं कि प्रोफेशनल के फेवर में चीजें होनी चाहिए, हमारे देश को उनका फायदा मिलना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई बैंकों के बारे में भी अभी और बातें होने लगी हैं कि बैंक के जो हेड बनाए जाएंगे, है ना, सीएमडी होते हैं, जो है चेयरमैन होते हैं, अलग अलग हमारे राष्ट्रीय बैंकों के होते हैं, उनमें भी प्रोफेशनल्स लाए जाएं। और कुछ लोगों की सुनने में, पेपर में पढ़ने में भी आ जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक को वहां से लेकर के प्राइवेट सेक्टर से लेकर के उसका हेड बनाया जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत इसे आप कह सकते हैं। अब ओपिनियन आपकी होगी कि इसे आप अच्छी मानेंगे या अच्छी नहीं मानेंगे। फ्रेंड्स, तीसरी खबर खासकर अश्लील वेबसाइट को लेकर के थी कि सरकार ने वो अपना स्टैंड विड्रॉ कर लिया है। कल इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी और इस पर मैंने कुछ आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड किए हैं, आज भी आपको नॉलेज सेंटर में आर्टिकल मिलेंगे, और इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मनुष्य के जीवन की स्वतंत्रता इन दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी प्राइवेसी है, लिबर्टी है उसकी, और दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। क्योंकि सवाल वेबसाइट पर, इस तरह के अश्लील वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने से आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यहां बाधित नहीं होगी, लेकिन जब आप इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो फिर आप दूसरे पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इसका जबरदस्त रूप से विरोध किया और अंत में सरकार को अपना यह निर्णय विथड्रॉ करना पड़ा। इसको लेकर के आज आर्टिकल्स भी हैं दोस्तों, वो आप लोग देख लेंगे। फिर जो एक खबर थी संसद में, आप देख रहे हैं कि संसद का सत्र नहीं हो पा रहा है, लगातार हंगामा मच रहा है और उसको लेकर के लगातार आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण लगते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, तो वो सब आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। इसके बारे में मैंने काफी कुछ चर्चा मैं आपसे कर भी चुका हूं। तो मित्रों, अब न्यूज में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं आता हूं थोड़े से न्यूज पेपर के ऊपर, थोड़ी सी बातें न्यूज पेपर पर। फ्रेंड्स, अभी हमने अश्लील वेबसाइट के बारे में बातें की, प्रीतिश नंदी का एक लेख दैनिक भास्कर में छपा है, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि प्रीतिश नंदी चीजों को बड़े हट करके एक अलग तरीके से देखते हैं। आप देखेंगे कि उनकी राइटिंग में आपको संवैधानिक प्रावधान, रूल्स रेगुलेशन, इन सब की चर्चा उतनी नहीं मिलेगी जितनी उन एक समाज के रूप में वो चीजों को देखते हैं, मतलब एक समाज शास्त्रीय के निगाह से वो घटनाओं को देखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में या एक सिविल सोसाइटीज में, उस निगाह से वो चीजों को देखते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रीतिश नंदी जी जो लिखते हैं, अगर आप उनको लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी भाषा मंजने लगेगी, उसमें एक रिदम आने लगेगा, एक लय आने लगेगी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और खासकर ऐसे राइटिंग के लिए इसी तरह के एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, आज आपको डॉक्टर भरत झुनझुनवाले का एक लेख पढ़ने को मिलेगा जो खासकर जीएसटी को लेकर के उन्होंने लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के। आप देख रहे हैं कि वो बिल भी अभी अटका हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में उन्होंने दो बहुत खूबसूरत प्रश्न उठाए हैं, एक काउंटर थॉट है जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के लागू हो जाने से क्या क्या फायदे होंगे। आपको काफी कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है ना। तो उन्होंने दो पॉइंट बहुत अच्छे रेज किए हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में, और आपको किसी आर्टिकल को पढ़ना भी इसी तरीके से चाहिए कि उसमें आप अपने काम की एक दो चीजें निकाल लें बस। उसमें पहला तो उन्होंने दोस्तों जो ये बात कही है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस से होगा क्या कि सभी वस्तुओं पर एक समान कर लगाया जाएगा, जबकि एक जो सोशलिस्टिक पैटर्न जो सोसाइटी होती है वो कर लगाने में किस नीति का सहारा लेती है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग धनी वर्ग ज्यादा करता है उस पर टैक्सेस के रेट हाई होते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग गरीब वर्ग या बहुत ही आम व्यक्ति करते हैं उन पर टैक्सेस के जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, और इस तरह से सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। तो अगर एक जैसा लगा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि उसको भी उसी तरह से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है वो ये है कि हमारे यहां छोटे छोटे उद्योग हैं और इसके बाद बहुत बड़े उद्योग हैं, तो मान लीजिए कि सभी उद्योग जो चीज पैदा कर रहे हैं उस पर आपने एक ही जैसा टैक्स लगा दिया, तो फिर ये जो छोटे उद्योग हैं वो बड़े उद्योगों के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार अभी जो छोटे उद्योग हैं उनको कुछ में तो टैक्स की बिल्कुल छूट देती है, और खासकर इनको प्रोत्साहन देने के लिए अगर टैक्स लेती भी है तो फिर बहुत थोड़ा टैक्स लेती है, तो ताकि ये सर्वाइव कर सके। और क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत है और हमको रोजगार की भी स्थिति को देखनी, ताकि हमारे जितने भी देश में हाथ हैं, युवा हाथ है खासकर, उनको रोजगार मिल सके, उनको काम मिल सके। तो ऐसी स्थिति में जो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सर्वाइव करेंगी, और छोटी जो हैं वो धीरे धीरे वाश आउट होती चली जाएंगी, किनारे होती चली जाएंगी। ये दो पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे रेज किए हैं, तो ये आपकी जानकारी में होने चाहिए। बाकी और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, नागालैंड में जो समझौता हुआ है उसको लेकर के है, ग्रोथ को लेकर के है, आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि सरकार को विकास के लिए आरबीआई की नीतियों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी ही नीतियों पर डिपेंड करना चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, बहुत वैलिड बात कही है। इस पर यदि हो सकेगा तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो दोस्तों, बहुत फ्रेंड्स के मेल आए हैं, और चूंकि मैं कल मेल इंक्लूड नहीं कर सका था तो आज मेल की संख्या भी काफी हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं बीएस मीना का जयपुर से मेल है, तो बीएस मीना आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो भावना व्यक्त की है वो वास्तव में बहुत ही पवित्र भावना है, बहुत अच्छी भावना है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बहुत ही साइंटिफिक भावना है। वो बहुत साइंटिफिक भावना नहीं कह रहे, बहुत ही वैज्ञानिक प्रोसेस भी है उसका, जो आप महसूस आपने किया, जो आप करने जा रहे हैं। तो ईश्वर आपकी इस क्षमता को और विकसित करे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और तनु आपका भी, तनु प्रिया सिंह का न्यू दिल्ली से है, उनका भी मेल है। मैं तनु, आपने जो बात लिखी है उसमें मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल पर वहां स्टेप उठाएं और किसी से सलाह लेकर के उस पर काम करना शुरू कर दें। लेकिन हताश किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं इस तरह की, आती जाती रहती हैं, और याद रखिए जिस दिन आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे उस दिन आपके दोस्त और चाटुकार तो आपको घेरेंगे ही, आपके पता नहीं आप बनते ही अपने कितने विरोधियों को जन्म दे देंगी। तब ये ढेर सारी चीजें सब होती रहती हैं, इनसे हमें अपनी बड़ी चीजों के लिए प्रभावित नहीं होना चाहिए। एग्जाम नजदीक है, दिमाग को मजबूत बनाइए। वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समय आने पर अपने आप खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने लेवल पर कुछ स्टेप उठाएं। मुझे जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको सूचित करूंगा। तो मित्रों, अब मैं उन दोस्तों के नाम लेता हूं जिनके मेल आए हैं। उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी बहुत आभार और धन्यवाद जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो मित्रों, कुछ नाम हैं: संदीप शर्मा बहादुरगढ़ से, संग्राम सुथार जैसलमेर से, पंकज मिश्रा नई दिल्ली से, मोनिका चौहान मुरादाबाद से, राहुल उपाध्याय इलाहाबाद से, वेद प्रकाश लखीमपुर खीरी से, अतुल तिवारी रीवा से, गौरव सिंह मुंबई से, सूरज सिंह रायपुर से, अनसुया बेहरा कटक से, शिशिर कुमार पाठक, नीलेश यादव, शांतनु देवनाथ अगरतला से, हर्षवर्धन कुशीनगर से, विकास जाखड़ जोधपुर से, संगीत कुमार, संदीप कुमार लखनऊ से, प्रमोद कुमार साहनी गोरखपुर से, अमरजीत सिंह श्रीगंगानगर से, प्रदीप कुमार कैथल हरियाणा से, अंगद शर्मा दिल्ली से, सुनील चौधरी गंगापुर पाटन से, रोहित शुक्ला बीएचयू बनारस से, और ज्ञान दत्त गोरखपुर से। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब मैं इजाजत चाहूंगा इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।